एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक आत्मा की चीत्कार है। कह सकते हैं कि एक युग का दस्तावेज है, रिचर्ड राइट की आत्मकथा ब्लैक बॉय।
हाँ,
ये महज एक संस्मरण नहीं, बल्कि 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य का वो मील का पत्थर है जो हमें नस्लवाद के गहरे मनोवैज्ञानिक जख्मों से सीधे रूबरू कराता है।
बिल्कुल सही कहा आपने। रिचर्ड राइट, जिनका जीवन 1908 से 1960 तक रहा, वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक आवाज थे।
हाँ,
अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय की आवाज, उन अनगिनत लोगों की जिनकी कहानियां शायद अनकही रह जाती थी। वो मिसिसिपी में जन्मे थे और उस दौर के दक्षिण में पले बढ़े जहां जिम क्रॉ कानून लागू थे।
अच्छा,
मतलब नस्ली अलगाव और भेदभाव ये जीवन का एक कड़वा सच था। उनके शब्द जो हैं वो सीधे उनके अनुभवों की भट्टी से निकले हैं, ऐसा लगता है।
और ब्लैक बॉय ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे एक बेहद संवेदनशील और जिज्ञासु बच्चा, जिसे हर तरफ से दबाने की कोशिश की गई, उसने शब्दों में, किताबों में अपनी पनाह ढूंढी, अपनी पहचान खोजी।
हाँ,
ये सिर्फ जिंदा रहने की कहानी नहीं है, ये उस माहौल के खिलाफ एक बौद्धिक और जज्बाती बगावत की दास्तान है एक तरह से।
बिल्कुल। और यहाँ ये जानना भी काफी दिलचस्प है कि ये किताब हम तक पहुंची कैसे। इसका जो मूल शीर्षक था वो था अमेरिकन हंगर।
अच्छा, दो हिस्से थे।
हाँ, 1945 में जब ब्लैक बॉय छपी तो उसमें सिर्फ पहला हिस्सा था, सदर्न नाइट, जो उनके दक्षिण के अनुभवों पर आधारित था। जो पूरा टेक्स्ट है, जिसमें शिकागो के उनके अनुभव भी शामिल हैं, वो हिस्सा द हॉरर एंड द ग्लोरी कहलाता है। वो तो 1977 में जाकर अमेरिकन हंगर नाम से प्रकाशित हुआ।
ओहो, काफी बाद में।
हाँ, काफी बाद में। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों हिस्सों से मिली जो पूरी तस्वीर है उसको ध्यान में रखकर बात कर रहे हैं।
तो फिर सवाल यही उठता है कि आज इतने सालों बाद भी, राइट, कि ये कहानी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। ये हमें जो सिस्टमैटिक नाइंसाफी होती है, अपनी पहचान की तलाश और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसान के अंदर की जो ताकत है, उसके बारे में क्या सिखाती है।
चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती सालों से।
हाँ, बिल्कुल।
राइट का जन्म, जैसा आपने बताया, 1908 में हुआ, मिसिसिपी के एक बागान के नजदीक। सोचिए कैसा रहा होगा वो बचपन। भयंकर गरीबी, लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकना, पिता का परिवार को छोड़ जाना, और माँ एला, जो खुद पढ़ी लिखी थी, उनका बीमार पड़ जाना।
हाँ, वो बीमार रहती थी।
मिसिसिपी और कांसस, टेनेसी, मतलब बचपन ठिकाने बदलता रहा उनका।
और ये जो भूख थी ना, ये सिर्फ पेट की भूख नहीं थी जिसने उन्हें सताया, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी, एक बेचैन करने वाली भूख। किस तरह की भूख?
ज्ञान की भूख, दुनिया को समझने की, कहीं जुड़ाव महसूस करने की। और यही भूख, ये हंगर, उनकी पूरी सोच और उनके लेखन का, कह सकते हैं, केंद्र बन गई।
बचपन की एक घटना का जिक्र अक्सर आता है, जब वो सिर्फ 4 साल के थे, मासूमियत में, शायद थोड़ी शरारत में, उन्होंने घर के पर्दों में आग लगा दी।
हाँ, ये बहुत मशहूर किस्सा है।
और सजा इतनी भयानक मिली कि वो लगभग मरते मरते बचे। ये दिखाता है कि उनकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा थी और उनके आसपास का जो कठोर दम घोटू माहौल था, वो शुरू से ही टकरा रहे थे।
बिल्कुल, यहाँ तक कि जानने की इच्छा रखना भी खतरनाक माना जाता था उस वक्त।
हाँ,
और ये दबाव देखिए दोहरा था, एक तरफ जो श्वेत समाज था उसकी हिंसा का हर पल डर, और दूसरी तरफ उनकी अपनी नानी मार्गरेट बोल्डन विल्सन का घर।
अच्छा, नानी का घर भी?
हाँ, जहाँ बहुत सख्त धार्मिक माहौल था। वो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थी, ये ईसाई धर्म की एक शाखा है जो अनुशासन और नियमों पर बहुत ज्यादा जोर देती है। तो रिचर्ड की कहानियों में रुचि, उनकी कल्पना की उड़ान, ये सब उनकी नानी की नज़र में एक तरह से गुनाह था। उनकी चाची थी एडी, जो धार्मिक शिक्षिका थी, वो अक्सर उन्हें सजा देती थी, तो उन्हें हर तरफ से दीवारें महसूस होती थीं, कहीं कोई अपनापन नहीं था।
कमाल की बात है कि इन सब मुश्किलों के बीच भी सीखने की उनकी प्यास बुझी नहीं। स्कूल की पढ़ाई भले ही टुकड़ों में हुई,
हाँ, वो लगातार नहीं हो पाई,
पर पढ़ने का जुनून जबरदस्त था। एक बार किसी किराएदार ने उन्हें ब्लू बियर्ड और उसकी 7 पत्नियों की कहानी सुनाई। ये उनके लिए किसी जादू से कम नहीं था।
हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था।
इसने उन्हें शब्दों की ताकत का, कहानी कहने की शक्ति का एहसास कराया।
लेकिन जैसा आपने कहा, उस माहौल में ज्ञान को खतरनाक माना जाता था, उनके परिवार के लिए, समाज के लिए एक अश्वेत लड़के का किताबों में खोया रहना ये अजीब था।
हाँ, शायद व्यवस्था के लिए एक चुनौती भी।
बिल्कुल, पढ़ने और सवाल पूछने को एक तरह से विद्रोह की तरह देखा जाता था।
इसी विद्रोह का एक शुरुआती कह सकते हैं सार्वजनिक प्रदर्शन तब हुआ जब वो अपनी 9वीं कक्षा के वैलिडिक्टोरियन चुने गए, यानी सबसे होनहार छात्र।
हाँ।
स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक सुरक्षित पहले से तैयार भाषण पढ़ने को दिया, लेकिन राइट ने साफ इनकार कर दिया।
अच्छा।
उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो अपना लिखा भाषण ही पढ़ेंगे, भले ही उन्हें धमकियां मिली और परिवार का भी दबाव था। सोचे उस उम्र में इतनी हिम्मत।
ये घटना सिर्फ एक भाषण की नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान का और अपनी सोच पर टिके रहने का एक ऐलान था।
बिल्कुल।
और यहीं से शायद उस घुटन भरे दक्षिण से निकलने की उनकी इच्छा और मजबूत हुई होगी। उन्होंने गुजारे के लिए ऐसी नौकरियां की जहां अपमान सहना पड़ता था, जिंदा रहने के लिए विनम्र होने का नाटक करना पड़ता था। और फिर मेम्फिस में उनकी मुलाकात हुई एचएल मैंगन के लेखन से। ये भी एक कहानी है अपने आप में।
हाँ, ये लाइब्रेरी वाली घटना।
हाँ, वही। अश्वेतों का लाइब्रेरी में जाना मना था उस वक्त, तो उन्होंने एक श्वेत सहकर्मी थे मिस्टर फॉक,
हाँ,
उनसे मदद मांगी।
अच्छा।
फॉक ने उन्हें अपना लाइब्रेरी कार्ड दिया।
हाँ।
और राइट ने लाइब्रेरियन के लिए एक जाली नोट लिखा। उसमें लिखा था, प्रिय महोदया, कृपया इस निगर लड़के को एचएल मैकेन की कुछ किताबें दें।
उन्होंने खुद निगर शब्द इस्तेमाल किया।
हाँ, ये निगर शब्द उस समय अश्वेत लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेहद अपमानजनक शब्द था।
और राइट ने इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया ताकि लाइब्रेरियन को कोई शक ना हो।
कमाल की तरकीब। और फिर मैकेन का लेखन, वो उनके लिए कैसा था?
वो जैसे एक धमाका था। मैकेन एक बहुत तीखे आलोचक थे जो अमेरिकी समाज और उसकी जो पाखंडी नैतिकता थी उस पर जोरदार हमले करते थे। उनके शब्दों ने राइट को अपने अंदर भरे गुस्से को, अपने अकेलेपन को जाहिर करने के लिए एक भाषा दी, एक वैचारिक ढांचा दिया, और यहीं से कह सकते हैं लेखक बनने का सपना जागा।
वहां भी नस्लवाद था, आर्थिक मुश्किलें थीं, लेकिन वहां उन्हें मिला जॉन रीड क्लब।
जॉन रीड क्लब?
हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा एक साहित्यिक समूह था, और ये पहली बार था जब उन्हें एक ऐसा बौद्धिक समुदाय मिला जहां वो खुलकर विचारों पर बहस कर सकते थे, लिख सकते थे, और यहीं वो मार्क्सवाद के विचारों से भी परिचित हुए।
अच्छा, तो वहां उन्हें एक तरह का बौद्धिक सहारा मिला।
बिल्कुल। फिर साहित्यिक दुनिया में पहचान धीरे धीरे मिली। 1938 में उनका कहानी संग्रह आया, अंकल टॉम्स चिल्ड्रन। इसने ये साबित किया कि अश्वेत जीवन के कड़वे सच को ईमानदारी से कहने वाली कहानियों के भी पाठक हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं।
लेकिन असली तूफान तो शायद नेटिव सन से आया।
हाँ बिल्कुल, 1940 में नेटिव सन का प्रकाशन। ये उपन्यास एक जबरदस्त कामयाबी थी। ये पहली किताब थी किसी अफ्रीकी अमेरिकी लेखक की जिसे प्रतिष्ठित बुक ऑफ द मंथ क्लब ने चुना था। इसने राइट को शोहरत और पैसा दोनों दिया, पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि इसने अमेरिका में नस्ल, हिंसा और समाज की संरचना पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसने श्वेत और अश्वेत दोनों तरह के पाठकों को हिलाकर रख दिया।
और इसी जमीन पर, इसी अनुभव और शोहरत के बाद उन्होंने 1945 में ब्लैक बॉय लिखी।
हाँ,
ये एक तरह से अपने सफर का विश्लेषण था, है ना? ये दिखाने की कोशिश कि नस्लवाद कैसे व्यक्ति की आत्मा को धीरे धीरे कुचलता है, कैसे वो एक सिस्टम के तौर पर काम करता है।
बिल्कुल। किताब की सफलता के बाद राइट अमेरिका के नस्लवाद से इतने तंग आ चुके थे कि 1947 में वो पेरिस चले गए।
पेरिस क्यों?
उन्हें लगा कि वहां उन्हें ज्यादा कलात्मक आजादी मिलेगी। वहां उनकी दोस्ती जॉन पॉल सार्त्र और सिमोन डी ब्यूवॉर जैसे मशहूर दार्शनिकों और लेखकों से हुई।
अच्छा, बड़े लोगों से?
हाँ, जीवन के आखिरी सालों में उनकी दिलचस्पी अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़े, और 1960 में सिर्फ 52 साल की उम्र में पेरिस में ही उनका निधन हो गया।
सिर्फ 52 साल? काफी कम उम्र थी।
हाँ, बहुत कम।
ये तो थी उनके जीवन की यात्रा। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, उनके विचारों, उनके मूल दर्शन और मूल्यों को समझने की कोशिश करते हैं। उनका दुनिया को देखने का नजरिया कैसा था?
देखिए, राइट का नजरिया काफी हद तक भौतिकवादी था। मतलब वो मानते थे कि समाज को समझने के लिए सत्ता के समीकरण और जो आर्थिक हकीकतें हैं उनको देखना ज्यादा जरूरी है बजाय सिर्फ विचारों के। उन्होंने नस्लवाद को सिर्फ कुछ लोगों की बुरी सोच या पूर्वाग्रह नहीं माना, बल्कि एक पूरे सिस्टम के तौर पर देखा। एक ऐसी व्यवस्था जो श्वेत लोगों के आर्थिक और सामाजिक दबदबे को बनाए रखने के लिए बनाई गई है।
तो फिर उनकी बुनियादी मान्यताएं क्या थी? वो कौन सी चीजें थी जिन पर उनका गहरा यकीन था?
दो बातें तो बहुत साफ नजर आती हैं। पहली, शिक्षा और पढ़ने लिखने की ताकत पर उनका अटूट विश्वास। वो मानते थे कि यही आजादी के सबसे बड़े हथियार हैं।
हाँ, ये तो उनके जीवन से दिखता भी है।
बिल्कुल। और दूसरी, कला और लेखन में पूरी ईमानदारी। उनका मानना था कि सच कहना जरूरी है, चाहे वो कितना भी कड़वा या असहज क्यों ना हो। दर्शकों या पाठकों को भले ही वो चुभे, लेकिन सच सामने आना चाहिए।
और धर्म को लेकर उनका क्या रुख था? नानी के घर का माहौल तो काफी सख्त धार्मिक था।
हाँ, उन्होंने अपनी नानी के उस कट्टर एडवेंटिज्म को पूरी तरह नकार दिया था। वो नास्तिक थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके लेखन में एक तरह की, कह सकते हैं, पैगंबराना संवेदनशीलता दिखती है।
अच्छा, किस तरह की?
जैसे साहित्य समाज का आईना बन सकता है, नैतिक गवाही दे सकता है और शायद बदलाव भी ला सकता है। उनका नास्तिक होना उन्हें ईश्वरीय मदद के बजाय इंसानी जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए प्रेरित करता था, ऐसा लगता है।
उनकी असली प्रेरणा कहाँ से आती थी? क्या चीज उन्हें लगातार लिखने और लड़ने के लिए उकसाती थी?
मुझे लगता है उनकी प्रेरणा का सोता उनके अपने दुख और संघर्ष ही थे। उस पीड़ा को एक मकसद देना, अपने निजी अनुभव को सबके समझने लायक बनाना और जो लोग बोल नहीं सकते उनकी खामोशी को आवाज देना।
हाँ,
और वो भूख, पेट की, दिमाग की, रूह की, वो हमेशा उन्हें आगे धकेलती रही, एक कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा की तरह।
ये सिर्फ अपनी कहानी कहना नहीं था ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने जीवन के उतार चढ़ाव को समझकर वो दूसरों को भी ऐसे ही पैटर्न, ऐसी ही संभावनाओं को पहचानने में मदद करना चाहते थे। उन्हें यकीन था कि ईमानदार लेखन समाज को बदल सकता है।
और मुश्किलों से लड़ने का उनका तरीका भी तो कमाल का था।
बिल्कुल। बचपन में वो दोहरा बर्ताव सीखते हैं, बाहर से विनम्र दिखना ताकि जिंदा रह सकें, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध करना।
एक तरह का मास्क।
हाँ, बिल्कुल। जब सीधी राह बंद थी तो उन्होंने शिक्षा हासिल करने के लिए टेढ़े रास्ते अपनाए, जैसे वो लाइब्रेरी वाली घटना। उन्होंने अपने जख्मों को, अपने ट्रॉमा को अपनी कला का कच्चा माल बना लिया।
हाँ, ट्रॉमा को कला में बदलना।
और आखिर में एक मजबूत व्यक्तिवाद विकसित किया। अपनी पहचान किसी समूह या विचारधारा के दबाव में नहीं, बल्कि उसके खिलाफ खड़ी।
चलिए, अब उन तीन खास पलों या घटनाओं पर गौर करते हैं जिन्होंने रिचर्ड राइट के जीवन की दिशा ही बदल दी। पहला, जाहिर है, वो लाइब्रेरी कार्ड वाली घटना।
हाँ, मेम्फिस में जब लाइब्रेरी में घुसना नामुमकिन था, तब मिस्टर फॉक की मदद और उस जाली नोट के जरिए एचएल मेनकिन तक पहुंचना।
इस एक घटना ने क्या बदल दिया? इसका असर कितना गहरा था, आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये सिर्फ किताबें पढ़ने की बात नहीं थी, ये राइट की हिम्मत, उनकी जिद और उनकी रचनात्मकता का सबूत था।
हाँ,
इसने उन्हें एहसास दिलाया कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं, कैसे वो अन्याय के खिलाफ हथियार बन सकते हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान हासिल करने के लिए वो कितना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार थे। सच पूछिए तो ये उनकी बौद्धिक आजादी की असली शुरुआत थी।
दूसरा अहम मोड़, वो वैलेडिक्टोरियन भाषण पढ़ने से इनकार करना।
हाँ, जब प्रिंसिपल ने उन्हें एक बना बनाया, सुरक्षित भाषण थमाया, तो उन्होंने उसे पढ़ने से साफ मना कर दिया।
बिल्कुल।
धमकियों और परिवार के दबाव के बावजूद अपना लिखा सच्चा भाषण देने पर अड़े रहे।
इस इनकार का क्या नतीजा हुआ? क्या इसने उन्हें और मजबूत बनाया?
यकीनन, ये दुनिया के सामने उनकी बौद्धिक ईमानदारी और आत्मसम्मान का पहला बड़ा प्रदर्शन था।
हाँ,
उन्होंने दिखा दिया कि वो झूठी सुरक्षा के लिए अपने समीर से समझौता नहीं करेंगे। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका दिमाग, उनकी सोच ही उनकी असली ताकत और आजादी है। इसने भविष्य के हर संघर्ष के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि सच के लिए खड़ा होना जरूरी है।
और तीसरा निर्णायक मोड़, कम्युनिस्ट पार्टी से उनका मोह भंग और अलगाव।
हाँ, शिकागो में शुरू में वो पार्टी और जॉन रीड क्लब को लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगा था कि यहाँ उन्हें वैचारिक घर मिलेगा। गया। सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना हुई और हद तो तब हो गई जब मई दिवस की परेड से उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया।
ओह, धक्का देकर बाहर निकाला गया, ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इसका उनके जीवन और सोच पर क्या असर पड़ा?
ये उनके लिए आखिरी मोहभंग था, कह सकते हैं। उन्हें समझ आया कि जो संगठन खुद को मुक्तिदाता कहता है, वो भी एक तरह का वैचारिक तानाशाह बन सकता है। इसने उनके अंदर के व्यक्तिवाद को और पुख्ता किया। अब वो हर तरह की विचारधारा, हर तरह के संगठन को शक की निगाह से देखने लगे। इस अनुभव ने उन्हें अकेले खड़े होने की ताकत दी और ये सिखाया कि एक कलाकार के लिए अपनी दृष्टि के प्रति वफादार रहना सबसे जरूरी है, चाहे कोई साथ दे या ना दे।
राइट के जीवन से हम सब क्या सीख सकते हैं? कैसे उनकी कहानी, जो इतनी निजी और तकलीफ देह है, हम सबके लिए प्रासंगिक बन जाती है?
सबसे पहली चीज जो दिल को छूती है, वो है उनका लचीलापन, उनकी जिद। सोचिए, इतनी गरीबी, इतना क्रूर नस्लवाद।
हाँ,
फिर भी सीखने और लिखने की उनकी लगन कभी कम नहीं हुई। ये हार न मानने का जज्बा सिखाती है।
और अपनी सोच की आजादी का महत्व, आज भी हम पर कई तरह के दबाव होते हैं, समाज के, परिवार के, विचारधाराओं के, कि हम एक खास तरीके से सोचें या बोलें।
बिल्कुल।
राइट का संघर्ष याद दिलाता है कि अपनी आवाज ढूंढना और उसके लिए खड़ा होना कितना जरूरी है।
सही कहा। उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि जब सिस्टम किसी को दबाने की कोशिश करता है तो उसका असर सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो इंसान की रूह तक को कुचलना चाहता है। और प्रतिरोध अक्सर अंदर से शुरू होता है, अपनी सोच पर नियंत्रण रखने से इनकार करने से।
तो आज के दौर में जब लोग अपने पहचान, नाइंसाफी और खुद को अभिव्यक्त करने की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, राइट की कहानी उन्हें कैसे हिम्मत दे सकती है?
देखिए, राइट की कहानी एक उम्मीद है। ये दिखाती है कि सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल हालात में भी शिक्षा, आत्मचिंतन और अपनी सच्चाई पर टिके रहने का साहस ये आजादी का रास्ता खोल सकता है।
हाँ,
ये याद दिलाती है कि हमारी आवाज, हमारी कहानी मायने रखती है, भले ही दुनिया उसे अनसुना करने की कितनी भी कोशिश करे। ये अंदर की भूख को पहचानने और उसे अपनी ताकत बनाने की प्रेरणा देती है।
चलिए इस गहरी और जरूरी बातचीत को तीन मुख्य बातों के साथ समेटते हैं।
जरूर।
पहली है एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। राइट की कहानी उस अथाह भूख, शारीरिक, बौद्धिक और रूहानी, और उस गहरे अकेलेपन को एक रचनात्मक और विश्लेषणात्मक शक्ति में बदलने का सफर है। ये दिखाती है कि कैसे बेहद मुश्किल हालात भी हिम्मत, समझदारी और जिद के साथ मिलकर असाधारण कामयाबी की नींव बन सकते हैं।
बिल्कुल। दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। दमन अक्सर ज्ञान पर नियंत्रण करके काम करता है, इसलिए पढ़ना लिखना और शिक्षा हासिल करना आज़ादी पाने के सबसे ताकतवर औजार हैं।
हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है।
और ये भी कि नस्लवाद सिर्फ कानूनी पाबंदी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग भी है जो पीड़ित को ही अपनी सीमाओं को सच मानने पर मजबूर कर सकती है। राइट का पूरा जीवन इस कंडीशनिंग को तोड़ने का संघर्ष था।
और तीसरी बात?
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। अपनी सच्ची आवाज में बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। समाज का विरोध झेलना पड़ सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, यहाँ तक कि खतरा भी हो सकता है।
हाँ, ये आसान नहीं होता।
बिल्कुल नहीं, लेकिन यही प्रामाणिकता और एक सार्थक जीवन की बुनियाद है। पहचान हमें मिलती नहीं है, उसे संघर्ष और कई बार अवज्ञा के जरिए गढ़ना पड़ता है। जीवन की सबसे गहरी भूख ही अक्सर हमें हमारे असली मकसद तक ले जाती है।
एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।